एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं आधुनिक जीव विज्ञान की नींव ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं जेम्स वॉटसन की किताब द डबल हेलिक्स के बारे में। ये किताब थोड़ी विवादास्पद भी रही है लेकिन बहुत प्रभावशाली है।
हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ डीएनए की खोज की कहानी नहीं है, ये उसके पीछे जो इंसानी पहलू थे ना, महत्वाकांक्षा, मुकाबला, कभी कभी थोड़ी ईर्ष्या भी, उसका एक बहुत ही कच्चा, मतलब अनफिल्टर्ड नजरिया देती है।
सही कहा, ये दिखाती है कि विज्ञान असल में कैसे काम करता है लैब के बंद दरवाजों के पीछे।
बिल्कुल, कोई सीधी लाइन नहीं होती अक्सर, इसमें ड्रामा है, इसमें टक्कर है, और हाँ किस्मत का भी रोल है। ये स्रोत इसे विज्ञान को समझने का एक अलग ही नजरिया मानते हैं।
तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद क्या है? हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई डीएनए की संरचना, जो इतनी बड़ी खोज थी, वो आखिर हुई कैसे, और इस पूरी प्रक्रिया के जो मानवीय पहलू हैं उन्हें थोड़ा कुरेदेंगे जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते।
हाँ चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले जेम्स वॉटसन, किताब के लेखक, एक युवा अमेरिकी जीव विज्ञानी, 1950s की शुरुआत में यूरोप आते हैं, और स्रोत बताते हैं कि जब ये खोज हुई 1953 में वो सिर्फ 25 साल के थे।
हाँ, उनकी उम्र और उनका अमेरिकी होना, ये दोनों बातें अहम हैं। वो ब्रिटेन के उस थोड़े पुराने या पारंपरिक अकादमिक माहौल में एक तरह से बाहरी थे, और उनकी किताब में ये नज़रिया झलकता भी है। थोड़ी बेबाक है, कभी कभी थोड़ी ज़्यादा ही पर्सनल लगती है।
हाँ, मतलब एक युवा का जोश और शायद थोड़ी अधीरता भी।
बिल्कुल, और उनकी कहानी इसीलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इस पूरी वैज्ञानिक खोज को एक रोमांचक कहानी की तरह बताया, जैसे कोई जासूसी नॉवेल हो। इसने विज्ञान को आम लोगों के ज्यादा करीब ला दिया।
ये दिलचस्प बात है, अक्सर हम विज्ञान को बहुत सूखा और गंभीर विषय मानते हैं।
सही,
लेकिन द डबल हेलिक्स इस इमेज को तोड़ती है। ये दिखाती है कि खोज का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा-मेढ़ा होता है। इसमें टैलेंट तो चाहिए, पर साथ में वो कंपटीशन वाली आग, कभी कभी अच्छी किस्मत, दूसरों की मदद
और गलतियां भी,
सब कुछ जरूरी होता है।
विज्ञान की असलियत मतलब।
हाँ बिल्कुल, इंसानी, उलझी हुई और अक्सर अप्रत्याशित।
चलिए अब इस कहानी के सफर पर चलते हैं शुरू से। वॉटसन यूरोप आते हैं, पहले कोपेनहेगन में थे शायद, पर वहां कुछ जमा नहीं।
हाँ, वो अपने उस समय के रिसर्च से खुश नहीं थे। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई नेपल्स में, वहां उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन के मॉरिस विल्किंस की एक प्रेजेंटेशन देखी। विल्किंस ने डीएनए क्रिस्टल की एक एक्सरे तस्वीर दिखाई थी।
एक्सरे तस्वीर? डीएनए की तस्वीर बहुत साफ नहीं थी जैसा वॉटसन ने लिखा है, लेकिन उसे देखकर वॉटसन को ये यकीन हो गया कि डीएनए की एक नियमित सुलझी हुई संरचना जरूर होगी। बस वहीं से जुनून सवार हो गया।
और फिर वो कैम्ब्रिज पहुंच गए, मशहूर कैविंडिश लैब।
हाँ, उसी जुनून में वो कैम्ब्रिज चले गए। कैविंडिश लैब उस वक्त फिजिक्स और स्ट्रक्चरल स्टडीज का बड़ा सेंटर थी। वहां उनकी मुलाकात हुई फ्रांसिस क्रिक से।
फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों की जोड़ी कैसे बनी? दोनों अलग अलग फील्ड से थे शायद।
हाँ, क्रिक उम्र में वॉटसन से बड़े थे और वो मूल रूप से एक भौतिक विज्ञानी थे, फिजिक्स वाले, लेकिन उनकी दिलचस्पी जीव विज्ञान की बड़ी पहेलियों में थी। तो क्रिक के पास थी गहरी थ्योरी वाली समझ और वॉटसन के पास थी बायोलॉजी की इंट्यूशन, मतलब अंदर की समझ, और दोनों में डीएनए को सुलझाने का जबरदस्त जुनून था।
तो एक तरह से परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया।
बिल्कुल, उनकी ताकतें एक दूसरे को पूरा करती थीं। ये जोड़ी बहुत जरूरी साबित हुई।
तो उन्होंने मिलकर मॉडल बनाना शुरू किया, जैसे कि लिनस पॉलिंग करते थे उनके बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका में। पर पहली कोशिश तो फेल हो गई, बल्कि बुरी तरह फेल हुई।
हाँ, वो उनकी शुरुआती नासमझी कह सकते हैं। उन्होंने किंग्स कॉलेज की रोजेलिन फ्रैंकलिन के एक सेमिनार में कुछ सुना था डीएनए में पानी कितना होता है इस बारे में, पर उन्होंने वो बात गलत याद रखी।
अच्छा,
हाँ, और उसी गलत जानकारी के आधार पे उन्होंने जल्दी जल्दी में एक तीन लड़ी वाला मॉडल बना दिया, ट्रिपल हेलिक्स, जिसमें डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी है, फॉस्फेट ग्रुप्स, वो अंदर की तरफ थे।
और फिर वो ये मॉडल दिखाने किंग्स कॉलेज गए, फ्रैंकलिन और विल्किंस को।
हाँ, बड़े जोश में गए, लेकिन वहां मामला उल्टा पड़ गया। रोजेलिन फ्रैंकलिन, जो एक्सरे की एक्सपर्ट थी और डीएनए पर बहुत ध्यान से काम कर रही थी, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि मॉडल में बुनियादी गड़बड़ है।
क्या गड़बड़ थी?
उन्होंने बताया कि फॉस्फेट ग्रुप्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर वो हेलिक्स के बीच में होंगे तो एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, अणु टिक ही नहीं पाएगा। ये तो केमिस्ट्री की बेसिक बात थी जो वो भूल गए थे।
बाप रे, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई होगी।
बिल्कुल, और इसका नतीजा भी हुआ। कैविंडिश लैब के जो हेड थे सर लॉरेंस ब्रैग, वो किंग्स कॉलेज से कंपटीशन को लेकर वैसे ही थोड़े परेशान थे। उन्होंने वॉटसन और क्रिक को डीएनए पर काम करने से ही मना कर दिया, कहा कि ये किंग्स कॉलेज का काम है, आप लोग दूर रहो।
ओह, तो काम बंद?
हाँ, एक तरह से उन पर पाबंदी लग गई। ये दिखाता है कि सिर्फ जोश काफी नहीं है, विज्ञान की गहरी समझ, केमिस्ट्री की पकड़, वो बहुत जरूरी है, और वो समझ फ्रैंकलिन के पास थी।
लेकिन जाहिर है उन्होंने हार नहीं मानी होगी, पाबंदी के बावजूद जुनून तो रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, और इस दौरान उनका ध्यान किंग्स कॉलेज में जो चल रहा था उस पर गया, खासकर फ्रैंकलिन और विल्किंस के बीच जो थोड़ी अनबन थी उस पर। हाँ, उन्होंने ऐसा लिखा है, पर बाद में लोगों ने कहा कि ये चित्रण शायद थोड़ा एकतरफा था। उस जमाने में विज्ञान में महिलाओं के लिए वैसे भी माहौल आसान नहीं था, शायद वो पूर्वाग्रह भी झलकता है।
और इसी बीच एक और टेंशन बढ़ रही थी, लिनस पॉलिंग।
हाँ, पॉलिंग उस समय दुनिया के सबसे बड़े केमिस्ट माने जाते थे संरचना के मामले में। जब वॉटसन और क्रिक को पता चला कि पॉलिंग भी डीएनए पर काम कर रहे हैं, तो उनकी हवाइयां उड़ गईं। डर था कि पॉलिंग बाजी मार ले जाएंगे।
जाहिर है।
लेकिन फिर किस्मत देखिए, पॉलिंग ने अपने डीएनए मॉडल का एक ड्राफ्ट भेजा। वॉटसन और क्रिक ने जब उसे देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। पॉलिंग जैसे बड़े वैज्ञानिक ने भी एक बुनियादी केमिस्ट्री की गलती कर दी थी।
पॉलिंग ने भी क्या गलती?
उन्होंने अपने मॉडल में फॉस्फेट ग्रुप्स को आयनित नहीं दिखाया था, मतलब उन पर चार्ज नहीं दिखाया था, जबकि पानी वाले घोल में तो उन पर चार्ज होता है। ये एक बड़ी चूक थी।
तो पॉलिंग की गलती ने इनके लिए दरवाजा फिर खोल दिया।
हाँ बिल्कुल, वॉटसन फिर से किंग्स कॉलेज गए, और यहीं वो पल आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया।
कौन सा पल?
ये कहानी का सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद हिस्सा है। मॉरिस विल्किंस ने, जो शायद फ्रैंकलिन के साथ काम करने में मुश्किल महसूस कर रहे थे या धीमी प्रोग्रेस से फ्रस्ट्रेट थे, उन्होंने वॉटसन को रोजालिंड फ्रैंकलिन की एक एक्सरे तस्वीर दिखाई, एक बहुत ही साफ तस्वीर, जिसे अब फोटोग्राफ 51 कहते हैं।
फोटोग्राफ 51, मैंने सुना है इसके बारे में। इसे देखकर ही वॉटसन को आइडिया आ गया था।
हाँ, वॉटसन ने लिखा है कि वो तस्वीर देखते ही उनके दिमाग में बिजली कौंध गई। उन्हें साफ दिख गया कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल है, मतलब कुंडली जैसा। तस्वीर में एक क्रॉस जैसा पैटर्न था जो हेलिक्स का पक्का सबूत होता है, और उस तस्वीर से हेलिक्स के नापतौल का भी अंदाजा लग गया।
लेकिन इसमें पेची है, जैसा आपने कहा कि ये तस्वीर विल्किंस ने फ्रैंकलिन की इजाजत के बिना दिखाई थी।
हाँ, यही सबसे बड़ा नैतिक सवाल है इस कहानी का, कि क्या ये सही था। इस पर आज तक बहस होती है, लेकिन साइंटिफिक नजरिए से देखें तो इस जानकारी ने वॉटसन और क्रिक को वो आखिरी पुश दे दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी।
वो वापस कैम्ब्रिज गए होंगे नए जोश के साथ।
बिल्कुल, अब उनके पास हेलिकल स्ट्रक्चर का पक्का सबूत था और उसके डायमेंशंस भी थे। अब बस ये पहेली सुलझानी थी कि अंदर बेस कैसे जुड़े होते हैं, ए टी जी सी।
हाँ, वो बेस पेयरिंग वाला फंडा, वो कैसे सुलझा?
ये आइडिया वॉटसन को अचानक आया। उन्हें एर्विन चारगाफ के रूल्स याद आए। चारगाफ ने बताया था कि डीएनए में हमेशा ए की मात्रा टी के बराबर और जी की मात्रा सी के बराबर होती है। वॉटसन ने सोचा कि अगर हेलिक्स की चौड़ाई एक जैसी रखनी है तो एक बड़ा बेस प्यूरीन ए या जी हमेशा एक छोटे बेस पायरिमिडीन टी या सी से ही जुड़ सकता है।
अच्छा,
और फिर उन्होंने स्पेसिफिक पेयरिंग सोची। ए हमेशा टी से जुड़ता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जी हमेशा सी से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसमें उनके एक साथी जेरी डोनोह्यू की एक छोटी सी सलाह भी काम आई, जिन्होंने बेस के सही केमिकल फॉर्म के बारे में बताया था।
और बस सारी कड़ियां जुड़ गईं।
हाँ, उन्होंने फौरन मॉडल बनाया, डबल हेलिक्स, दो लड़ियां बाहर एक दूसरे से उल्टी दिशा में लिपटी हुई, और अंदर ए टी और जी सी की जोड़ी, जैसे किसी घुमावदार सीढ़ी के डंडे हों।
कमाल है, और ये मॉडल सारे सबूतों से मेल खाता था?
बिल्कुल, फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा से, चारगाफ के रूल्स में सब फिट बैठ रहा था, और सबसे बड़ी बात, इस मॉडल ने फौरन ये समझा दिया कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता होगा। एक लड़ी दूसरे के लिए टेम्पलेट बन सकती थी।
मतलब संरचना से ही काम करने का तरीका पता चल गया।
एग्जैक्टली, यही इस मॉडल की खूबसूरती थी। ये सिर्फ ढांचा नहीं था, ये जीवन के कोड का रहस्य खोल रहा था। यहीं से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नया दौर शुरू हुआ, जैसा कि कहते हैं, क्रिक ने कैम्ब्रिज के पब में ऐलान किया था, हमने जीवन का रहस्य खोज लिया है।
वाह, क्या कहानी है। अच्छा, अब जरा इसके पीछे के दर्शन और मूल्यों पर आते हैं। वॉटसन को क्या चीज चला रही थी, सिर्फ ज्ञान की प्यास?
किताब तो यही बताती है कि ज्ञान की प्यास तो थी, लेकिन उसके साथ साथ या शायद उससे भी ज्यादा फेमस होने की इच्छा, नोबेल प्राइज जीतने की महत्वाकांक्षा, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग था।
मतलब विज्ञान भी इंसानी इच्छाओं से चलता है,
वॉटसन का तो यही मानना लगता है। वो दिखाते हैं कि बड़ी खोजें अक्सर इसी कॉम्पिटिशन और पर्सनल एम्बिशन से निकलती हैं। वो विज्ञान को बहुत आदर्शवादी चश्मे से नहीं देखते, उसमें ईगो है, जलन है, दोस्ती है, दुश्मनी है, सब कुछ है।
और सफलता असफलता पर उनका क्या नजरिया है? पहला मॉडल तो फेल हुआ था ना?
हाँ, तो किताब दिखाती है कि फेलियर भी प्रोसेस का हिस्सा है, शायद जरूरी भी। और जहां तक सक्सेस की बात है, वो दिखाती है कि ये सिर्फ मेहनत या दिमाग का खेल नहीं है, इसमें इंट्यूशन, सही टाइमिंग, किस्मत और हाँ, दूसरों से मिली जानकारी, चाहे वो कैसे भी मिली हो, उसका भी बड़ा रोल होता है।
जैसे पॉलिंग की गलती या फोटोग्राफ 51 का मिलना।
बिल्कुल।
एक और चीज जो उभर कर आती है, वो है अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को मिलाने की जरूरत।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये खोज हो ही नहीं सकती थी अगर अलग अलग एक्सपर्ट साथ नहीं आते। वॉटसन का बायोलॉजी, क्रिक की फिजिक्स, फ्रैंकलिन और विल्किंस की एक्सरे टेक्निक, चारगाफ की केमिस्ट्री, इन सबको मिलाना पड़ा।
ये दिखाता है कि बड़े आइडियाज अक्सर सीमाओं को तोड़ने से ही आते हैं।
सही बात है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे कहते हैं।
चलिए अब उन तीन खास पलों की बात करते हैं जिन्होंने कहानी की दिशा ही बदल दी। पहला टर्निंग पॉइंट क्या मानेंगे आप?
मेरे ख्याल से पहला मोड़ था नेपल्स में विल्किंस की वो धुंधली सी एक्सरे तस्वीर देखना। वहीं से वॉटसन के दिमाग में डीएनए का कीड़ा घुसा था, वो पहली चिंगारी थी।
और दूसरा क्या, वो पहली मॉडल की नाकामी थी?
हाँ, मैं उसे ही दूसरा मोड़ कहूंगी। वो जो ट्रिपल हेलिक्स मॉडल फेल हुआ और उन पर बैन लगा, वो एक झटका था जिसने उन्हें शायद थोड़ा जमीन पर लाया। उन्हें समझ आया कि सिर्फ मॉडल बनाने से नहीं चलेगा, केमिस्ट्री और एक्सपेरिमेंटल डेटा को समझना पड़ेगा। और इसने उन्हें किंग्स कॉलेज के काम पर ज्यादा ध्यान देने को मजबूर किया।
और तीसरा, जो शायद सबसे नाटकीय और अहम था,
बिना शक वो था फोटोग्राफ 51 का सामने आना। मॉरिस विल्किंस ने जब वॉटसन को वो तस्वीर दिखाई, उसके नैतिक सवाल अपनी जगह है, लेकिन उस जानकारी ने उन्हें हेलिकल स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन और जरूरी नाप तौल दे दिया। उसके बिना शायद वो सही मॉडल तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचते। वो गेम चेंजर था।
बिल्कुल। अब कुछ मानवीय सबक जो इस कहानी से मिलते हैं। विज्ञान की जो एक आदर्श छवि होती है, ये कहानियों से कैसे तोड़ती है?
ये साफ दिखाती है कि वैज्ञानिक भी हम जैसे इंसान ही हैं। उनमें भी वही भावनाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा, असुरक्षा, पसंद नापसंद, पूर्वाग्रह। बड़े बड़े दिमाग भी ईर्ष्या और शोहरत की चाहत से अछूते नहीं है। विज्ञान कोई एकदम वस्तिनिष्ठ, भावनाओं से परे चीज नहीं है।
और सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा, ये भी एक बड़ा थीम है।
हाँ, ये एक क्लासिक टेंशन है। कंपटीशन ने उन्हें तेजी से काम करने को उकसाया, पर इसी चक्कर में डेटा शेयरिंग और क्रेडिट देने में नैतिकता के सवाल खड़े हुए। ये संतुलन बनाना कि कब साथ काम करें और कब मुकाबला, ये हर फील्ड में एक चुनौती है।
या, उसे क्या सीख मिलती है?
फ्रैंकलिन की कहानी विज्ञान में महिलाओं के संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और ये भी कि किसी के योगदान को उसकी पर्सनैलिटी या जेंडर के आधार पर नहीं, बल्कि काम के आधार पर आंकना चाहिए। वॉटसन का चित्रण उस समय के माहौल से प्रभावित था। इतिहास ने बाद में फ्रैंकलिन के काम को पहचाना, जो जरूरी भी था।
सही। और किस्मत, इंट्यूशन, अचानक हुई मुलाकातों का रोल?
हाँ, ये भी एक अहम सबक है। सफलता हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं मिलती। कभी कोई आइडिया अचानक कौन जाता है, कभी किस्मत साथ देती है, कभी किसी से यूं ही हुई बात बड़ी मददगार साबित हो जाती है। ये सिखाता है कि दिमाग खुला रखना चाहिए, अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए।
बेहतरीन। चलिए अब इस बातचीत के अंत में तीन मुख्य बातें निकालते हैं। पहली, कोई एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
भावनात्मक अंतर्दृष्टि ये है कि बड़ी खोजें सिर्फ दिमाग का काम नहीं होती, वो गहरे जज्बातों से जुड़ी होती हैं। जुनून, महत्वाकांक्षा, रिश्तों का तनाव, सफलता की खुशी, नाकामी की निराशा, ये सब उस यात्रा का हिस्सा है। वॉटसन की किताब इसी इंसानी पहलू को उजागर करती है।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि।
बौद्धिक अंतर्दृष्टि ये है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना सिर्फ एक खूबसूरत ढांचा नहीं थी, वो अपने आप में जीवन का कोड और उसकी कॉपी बनाने का तरीका बता रही थी। मतलब संरचना ने ही कार्य प्रणाली का राज खोल दिया। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी और एलिगेंट छलांग थी।
और आखिर में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो सबके काम आए।
सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है कि इनोवेशन या कोई भी बड़ी सफलता अक्सर सीधे रास्ते से नहीं मिलती। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा गड़बड़झारा वाला हो सकता है। असफलताओं से सीखना, अलग अलग नजरियों को अपनाना और यहाँ तक कि कैजुअल बातचीत से भी सीखना, ये बातें किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। लचीलापन और खुलापन बहुत मायने रखता है।
बिल्कुल, ये कहानी विज्ञान के मानवीय चेहरे और नई खोजों के अप्रत्याशित प्रकृति को बहुत अच्छे से दिखाती है।
और एक आखिरी सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या महान खोजों के लिए कभी कभी नैतिक रूप से संदिग्ध रास्ते अपनाना ठीक है? क्या अंत इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि साधन गौण हो जाए, खासकर जब नतीजा पूरी मानवता के ज्ञान के लिए इतना अहम हो? फोटोग्राफ 51 वाला वाक्या इसी सवाल को खड़ा करता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।